नमस्कार भारत, आज है 12 अप्रैल दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। पाकिस्तान में मौत की सजा का इंतजार कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए एकजुट हुए राजनीतिक दल, लेकिन क्या बचाव का है कोई रास्ता?
इनका जो एक विकल्प बचता है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनके सामने ये वो क्लेमेंसी की या रहम की अपील करें।
यूपी में अवैध बूचड़खानों की बंदी के बाद बेरोजगार हुए मांस कारोबारियों ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में किया प्रदर्शन। मिलेगा एक ऐसे टीचर से जिन्होंने हजामत बनाकर भी पूरी की ऊंची तालीम की हसरत।
हमने जिंदगी में क्या नहीं किया, लेकिन क्यों याद करें? आगे हमें कल देखना है, पीछे नहीं देखना। ये मेरा एक नसबुलैन है कि आगे देखना है, पीछे नहीं देखना।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत में पाकिस्तान में मौत की सजा पाने वाले कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारतीय संसद में सरकार और विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए पाकिस्तान से जाधव की रिहाई की मांग करते हुए सख्त बयान जारी किया है। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन में दिए बयान में कहा है कि जाधव को फांसी दिए जाने के मामले में सभी स्थानीय कानूनों का पालन किया गया है। भारत के कई शहरों में पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन भी हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि बशर अल असद के दुश्मन उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए रासायनिक हमला करने की साजिश रच रहे हैं। पुतिन ने अपने दावे का कोई सबूत पेश नहीं किया। रूसी सेना के बयान में सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई रुदोस्की ने कहा है कि उनके पास विद्रोही लड़ाकों के जहरीले पदार्थ सीरियाई शहर खान शैखून के पास लेकर आने के सबूत हैं। सर्गेई रुदोस्की ने कहा, हमारी विश्वसनीय जानकारी के मुताबिक विद्रोही गुट खान शैखून एलेपो के पश्चिम में ज़रहा हवाई अड्डे और पूर्वी घोटा शहर के पास जहरीले पदार्थ जुटा रहे हैं। इसका उद्देश्य सीरियाई सरकार पर रासायनिक हमला करने के और कारण पैदा करना और अमेरिका को नए हमलों के लिए उकसाना है। जर्मनी की पुलिस का कहना है कि धमाके का निशाना बनी चैंपियंस लीग मैच खेलने जा रही फुटबॉल टीम बोरसिया डॉर्टमंड की बस को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। बस तीन धमाकों की चपेट में आ गई थी, जिसमें एक खिलाड़ी घायल हुआ है। एक प्रेस वार्ता में पुलिस प्रमुख ने बताया कि घटनास्थल के पास एक पत्र भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी। जर्मनी की समाचार सेवा के मुताबिक पुलिस सभी दृष्टिकोणों से जांच कर रही है, जिसमें विरोधी फुटबॉल क्लब के फैंस का हमला भी शामिल है। डॉर्टमंड में मोनाको के खिलाफ होने वाले मैच को बुधवार शाम तक के लिए रद्द कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता ने स्वीकार किया है कि उन्होंने हिटलर और रासायनिक हथियारों को लेकर असंवेदनशील और अनुचित बयान दिया था। सीन स्पाइसर ने कहा था कि हिटलर ने भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार इस्तेमाल नहीं किए थे। CNN से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई है और वो बयान से आहत लोगों से माफी मांगते हैं। स्पाइसर ने व्हाइट हाउस की प्रेस वार्ता में बयान देते हुए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और हिटलर की तुलना करते हुए रूस की सीरियाई सरकार की मदद की आलोचना की थी। स्पाइसर ने कहा था कि सीरिया ने अपने ही नागरिकों पर रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए। इस दौरान पत्रकारों ने स्पाइसर को याद दिलाया कि यहूदियों और अन्य लोगों को मारने के लिए भी जर्मनी ने जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया था। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी अफ्रीका में सक्रिय इस्लामी चरमपंथी समूह बोको हराम को आत्मघाती हमलों के लिए और अधिक बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस साल के पहले 3 महीनों में नाबालिगों ने नाइजीरिया, नाइजर, चैड और कैमरून में 27 आत्मघाती हमले किए। नाबालिगों ने इतने ही हमले पूरे 2016 साल में किए थे। ज्यादातर हमलावर लड़कियां थीं, जिन्होंने सुरक्षा चौकियों या सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र ने बोको हराम की बच्चों के आत्मघाती हमले में इस्तेमाल की आलोचना की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलावर बच्चों को अपराध में शामिल होने के बजाय पीड़ित माना जाना चाहिए। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति माइकल टेमेर की सरकार में शामिल 9 शीर्ष लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इनमें विदेश मंत्री अलोइसियो नूनेज भी शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत सरकार ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। पिछले साल मार्च में गिरफ्तार हुए जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी करने का आरोप लगा था। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में कहा कि जाधव को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाएगा।
इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा
वो करेंगे।
आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे, और किसी ना किसी तरह से इस जाधव को बचाने का काम। वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है।
ये थी भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को मिली सजा उन लोगों के लिए चेतावनी है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुलभूषण को दी गई सजा में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया है। पाकिस्तान में इस मामले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी उर्दू के हमारे सहयोगी हारून रशीद से बात की।
जब कुलभूषण की सजा का ऐलान हुआ था तो उस वक्त तो पाकिस्तानी मीडिया में काफी इस पर बात हुई थी, और कल काफी इस पर बहस भी हुई के बाद आज कोई ज्यादा उस पर बात नहीं हो रही। आज सेनेट में जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ताहम इस पर बात की है और जो सजा पाकिस्तान ने दी है उसका दिफा किया है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, तमाम जो लीगल मसाइल थे उसको देखा गया है और उसके बाद ये सजा दी गई है। तो उन्होंने जो भारत का इस पर क्रिटिसिज्म था या इस पर तनकीद थी उसको मुस्तरद किया है। लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस पर काफी बहस चल रही है, और पाकिस्तान में ट्विटर के जो दो आज सारा दिन सबसे ज्यादा ट्रेंड्स रहे वो कुलभूषण से ही मुतालिक थे, और जो पाकिस्तान में ज्यादा स्टेट नैरेटिव और जो लोग बात कर रहे हैं वो इस बात को जो सरकार ने कहा है उसी की तायिद कर रहे हैं कि अगर वो जासूस था तो उसको सजा हुई है, और उसने खुद ही उसका एतराफ भी किया है। लेकिन इस बात पे कोई बात नहीं कर रहा कि क्या ये अंडर डिटेंशन जो उसने बयान दिया है इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या कोई हो सकती है या नहीं।
भारत सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से लगातार ये पूरी जो कार्रवाई की गई इस पर सवाल उठाया गया है, उसके बयान पर सवाल उठाया गया है। सवाल ये भी उठाया गया है कि 13 बार एक्सेस मांगा गया लेकिन कुलभूषण जाधव से मुलाकात नहीं करने दी गई, इसको लेकर क्या कोई बात सरकार की तरफ से सामने आई है पाकिस्तान में?
देखें, पाकिस्तान ने तो पहले भी कहा था कि कुलभूषण का जो मामला है वो सारी यहाँ की जो मिलिट्री है वो उससे डील कर रही है, और एक्सेस की जहाँ तक बात है तो उसका कहना था कि इस तरह के केसेस में कोई सरकार जो है वो एक्सेस नहीं देती, ये काफी संगीन और सीरियस मसला है। लेकिन इसके बावजूद उनको एक लीगल अफसर की यानी वकील की सहूलत दी गई थी, फिर भी कुलभूषण ने, जो सरकार यहाँ कह रही है कि एक मजिस्ट्रेट और अदालत के सामने अपना जुर्म माना है, इस पर तो यहाँ पर मतलब मुकम्मल एक किस्म का सरकार की तरफ से इसका डिफेंस हो रहा है और दिफा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग, शायद इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है ना सरकार की तरफ से ना कहीं से, लेकिन कुछ लोग इस अचानक सजा के ऐलान को, जो नेपाल में पाकिस्तानी सेना का एक पूर्व अफसर जो लापता हुआ है उसके साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, और शायद ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इसका किसी तरह से उससे भी कोई ताल्लुक हो सकता है या भारत से कोई ताल्लुक हो सकता है उसका।
ये थे इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू के संवाददाता हारून रशीद। कुलभूषण जाधव के पास मौत की सजा से बचने के लिए क्या रास्ते हैं? बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन से बातचीत में यही जानने की कोशिश की।
नॉर्मली अगर जासूसी का केस होता है तो सरकारें जिस जासूस को पकड़ा गया होता है उससे बिल्कुल हाथ धो देती हैं और अक्नॉलेज भी नहीं करती कि वो उनको जानती हैं। इस केस में ये नहीं किया गया, और ये माना गया कि भाई ये भारतीय नागरिक है और हमारे को इसकी पास रसाई पहुंचाई जाए, जिसको पाकिस्तान ने नहीं किया। और उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाएं हैं उसका उल्लंघन किया उसमें। भारत सरकार अपने ताई दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कितना कारगर साबित होगा उस पर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है।
थोड़ा सा समझना चाहिए कि सब मिलिट्री कोर्ट ने किया,
अभी
तो क्या अगला क्या प्रोसेस?
अभी तो ये है कि एक महदूद सी अपील इनके पास होगी, उसी व्यक्ति के पास जिन्होंने इसके ऊपर डेथ सेंटेंस दिया उन्हीं के पास ये अपील के लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद शायद, अब मुझे पाकिस्तान के कानून का इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ सुनने में ये आ रहा है कि शायद एक अपील सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये दायर कर सकते हैं। और फाइनली इनका जो एक विकल्प बचता है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति उनके सामने ये एक वो क्लेमेंसी की या रहम की अपील करें।
तो क्या इंडिया अपना वकील कोई दे सकता है जाधव का केस लड़ने के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील की बात की जाए?
उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप अपील तो कर सकते हैं, आप वहां पर किसी वकील को भी हायर कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि जब फिजा ऐसी बनी हो कि सारा का सारा जो शहर हो आपको फांसी पर टांगने पर आमादा हो, तो फिर वो अपील कर भी लें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मतलब कि एक तो वो विकल्प है कि आप जो भी पाकिस्तान में जिसको कानून बोलते हैं उस प्रणाली के तहत जो भी कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है उसकी आप गुहार लगा लें, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल कूटनीतिक स्तर पर आपके पास और थोड़े बहुत विकल्प होंगे। आप एक तो जैसे की तैसी कर सकते हैं, मतलब कि जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया उसी तरीके का व्यवहार आपकी तरफ से भी हो सकता है।
ये थे पाकिस्तान मामलों के जानकार सुशांत सरीन। और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। मैं देख रहा हूँ दिलनवाज पाशा स्टूडियो में तमाम अखबारों को उलट पुलट रहे हैं, क्या क्या खबरें आपने ढूंढ के निकाली हैं?
जी अमरीश, आज भारत में दिल्ली से प्रकाशित सभी अखबारों में जाधव, कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान में जिन्हें मौत की सजा मिली है उनसे जुड़ी खबरें पहले पन्ने पर हैं। जनसत्ता लिखता है पूरा देश कुलभूषण जाधव के साथ, पाकिस्तान को चेताया सजा दी तो मिलेगा करारा जवाब, और यही हेडलाइन करारा जवाब वाली कई और अखबारों में है। इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वारंट, गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, ये आज के हिंदुस्तान में खबर है। और आम आदमी पार्टी से जुड़ी नकारात्मक खबरें आज अखबारों में पहले पन्ने पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है, अमर उजाला बता रहा है। और एक और खबर के मुताबिक जो एलजी के आदेश पर 97 करोड़ रुपए वसूलने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं
जी, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और उसका प्रचार बड़ी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा एक और खबर मेरा ध्यान खींच रही, रात हम बात भी कर रहे थे सोशल मीडिया पर किस तरीके से पंजाब में जो छात्रों ने फीस बढ़ाए जाने की का विरोध किया, उनके साथ उन लाठीचार्ज हुआ, उनकी तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे थे। और आज अखबारों में खबर है कि 66 छात्रों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया कर लिया गया है, ये खबर कई अखबारों में है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर ध्यान खींच रही है, इसके मुताबिक एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि जो टेलीफोन टावर होता है उसकी वजह से उसको कैंसर हो गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस टावर को बंद करने का आदेश दिया है। तो ये खबर आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया है। इसके अलावा द हिंदू में एक खबर है, जब हम कुलभूषण जाधव और भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात कर रहे हैं, इसी बीच एक खबर है कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान के दो डूबते हुए सुरक्षाकर्मियों को बचाया है, उनका जो नाव है वो समंदर में डूब गई थी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज अखबारों की समीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अवैध बूचड़खानों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मांस कारोबारियों ने कल प्रदर्शन किया और कहा कि बूचड़खानों के बंद होने से उनके सामने पैदा हुआ रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव भी किया। एक रिपोर्ट के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल।
उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई के बाद अपने रोजगार को लेकर चिंतित मांस कारोबारी, कुरैसी और बुनकर समाज के लोग अब सड़क पर उतरकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। अपनी दिक्कतों और मांग को ऊपर तक पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में जुटे इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय का घेराव किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल मांस कारोबारी शाहिद बताते हैं।
भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई, इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब मोदी सरकार से हम लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हमारा अधिकार है अपनी पसंद का खाना और अपनी पसंद का व्यवसाय, तो हम इस मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं। मोदी सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए और हमारे स्लॉटर हाउस को चालू किया जाए, हमारे लाइसेंस को रिन्यू किया जाए।
प्रशासन की कार्रवाई में नईम का बुचड़खाना भी बंद हो गया है, उन्होंने अपनी दिक्कत बयान करते हुए कहा।
आज फिर हम लोग प्लान बना रहे हैं इससे बड़ा पूरे पूर्वांचल का मतलब की वो करने के लिए करना, और जितने अंसारी समाज के जितने भी सब लोग हमारे साथ हैं।
विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले भाकपा माले के नेता मनीष शर्मा ने मांगों को सामने रखा।
जो मोदी जी बार बार कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, तो ये किस तरह का सबका साथ सबका विकास है? हम समझते हैं कि यह एक वैध अवैध समाज में और देश में तमाम धंधों में है, लेकिन हमला केवल पुराए समाज पे क्यों हो रहा है? हमला केवल गोश्त के व्यापारियों पे क्यों हो रहा है? हमला केवल जो है मटन और मुर्गे के व्यापारियों पे क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि एक कम्युनल अटैक है, एक मोदी जी का एक सांप्रदायिक अटैक है, और इस कम्युनल अटैक के जरिए वो 2019 की राजनीति के बारे में सोच रहे हैं।
यूं तो वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर लोग अपनी निजी या फिर सामूहिक दिक्कत को लेकर आते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी सरकार बनने के बाद सरकार के फैसले के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का ये पहला मामला है। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रदर्शन के बाद क्या इस समस्या का हल निकलेगा या फिर लड़ाई अभी और आगे जाएगी। बीबीसी हिंदी के लिए रोशन जायसवाल, वाराणसी।
समाजवादी पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने हाल में गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद महाराज से मिली गाय लौटा दी है। उन्होंने शंकराचार्य को एक पत्र भी लिखा है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने शंकराचार्य अधोक्षजानंद महाराज से बात की और सबसे पहले पूछा कि उन्होंने ये गाय आजम खान को क्यों दी थी।
2013 में आजम खान उत्तर प्रदेश के नहर विकास मंत्री बने और इसलिए उनको कुंभ मेला संचालन का प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया और वहाँ की व्यवस्थाएं 2013 की बहुत ही सुंदर थी और साधु संत सब हमारे बहुत संतुष्ट थे, इसलिए उनको वहाँ सम्मानित भी किया गया। और गाय जो हमारे राष्ट्रीयता का प्रतीक है और आस्था का केंद्र बिंदु है हम हिंदुओं के लिए, वो उनको भेंट किया गया था। और काली गाय कि उनके मन में इच्छा थी कि वो उसकी सेवा करेंगे, इसलिए हमने आज से लगभग 1.5 साल पहले उनको श्यामा वर्ण की एक गाय और बच्चिया उनको भेंट किया था जिसकी वो सेवा कर रहे थे।
शंकराचार्य जी, लेकिन अब गाय उन्होंने लौटा दी है, एक आपको पत्र भी लिखा है, क्या कुछ पत्र में कहा गया है और उनका जो ये फैसला है आप इसे कैसे देख रहे हैं?
राजनीतिक मसलों पर हम टिप्पणी करना उचित नहीं मानते, लेकिन ये गाय का जो मसला है ये राजनीति से एकदम अलग रखा जाना चाहिए। और उन्होंने एक पत्र हमको 2 पेज का लिखा है जिसमें उन्होंने दुख जताया है कि आपके द्वारा भेंट की गई जो गाय है मुझे मजबूरी में वापस करना पड़ रहा है, और उसके बारे में राजस्थान में जो हत्या हुई है, घर को गाय ले जा रहे थे कुछ लोग जो मुसलमान थे और उनको कुछ कथित गो भक्तों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, इस बात को लेके वो पत्र में अपनी चिंता दर्शाए हैं और भय भी दर्शाया है कि इस कारण से वो मजबूरी में गाय को वापस कर रहे हैं। उनके फैसले के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
तो जिस तरह का ये डर का माहौल बना है जिसमें आजम खान जैसे नेता भी डर रहे हैं, इस माहौल को आप क्या कहेंगे?
उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, इसका लोखा जोखा राजनीतिकों को करना चाहिए जिन्होंने भयमुक्त समाज की व्यवस्था कायम करने का शपथ लिया है, संविधान को लागू करने और नागरिकों के रक्षा के लिए उनके अधिकारों के रक्षा के लिए सरकारें शपथ लेती हैं। तो ये सब मामलों में जो भी लेखा जोखा है सरकारों को करना है, नेताओं को करना है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि देश में अमन शांति बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे और एक दूसरे के जो आस्था है उनका सम्मान सब लोग करें।
जिस तरह से गायों की जान बचाने के नाम पर इंसानों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है, कुछ जगह तो जाने गई भी हैं, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं?
पीछे कई घटनाएं इस तरह की हुई है उससे आप अवगत हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी भी इस विषय में ऐसे गौ भक्तों के बारे में कुछ दिन पहले अपना बयान स्पष्ट कर चुके हैं। तो इससे जाहिर है कि सारी जानकारियां प्रधानमंत्री जी को भी है, वो स्वतः इस पर निर्णय लें कि जिन कारणों से समाज का वातावरण खराब होता है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो वहां किस तरह से सुधारना है। एक कानूनी लाइन बन जाए कि देश के अंदर गाय को नुकसान पहुंचाने वाले को फांसी की सजा है, जब ये कानून का रूप ले लेगी तो इस पर किसी भी प्रकार का घफलतखोरी करने का हक न गौ भक्तों को और न गौ कसी करने वालों को, दोनों को न हक रह जाएगा और न गुंजाइश रह जाएगी।
ये थे गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य अधोक्षजानंद जी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्ज पर।
असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा तैयार जनसंख्या नीति के मसौदे पर मुसलमान संगठनों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने इस मसौदे में 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी में अयोग्य करार दिए जाने की बात कही है। अगर ये नीति लागू हो जाती है तो 2 से अधिक बच्चे वाले परिवार के लोग पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का अधिकार भी खो देंगे। गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
असम में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक नई जनसंख्या का मसौदा तो जारी कर दिया है, लेकिन मौजूदा माहौल में सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जबकि सरकार का कहना है कि पिछले 16 साल में प्रदेश की जनसंख्या करीब 1 करोड़ बढ़ी है, ऐसे में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने इस प्रस्तावित मसौदे में 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार देने की जो बात कही है उससे यहाँ के मुसलमान काफ़ी असहज दिख रहे हैं। मसौदे में कहा गया है कि 2 बच्चे की शर्त पर सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्ति नौकरी पाने के बाद भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। सरकार के इस कदम पर जहां विपक्षी पार्टियां विरोध जता रही है, वहीं ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष अजीजुर रहमान का कहना है।
असम गवर्नमेंट का जो हेल्थ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था, उन लोगों ने बोल रहे हैं 2 बच्चा से ज्यादा होने से कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। हिमंत विश्व शर्मा खुद वो 3 नंबर है उन लोगों का घर का पता, जो लोग गरीब लोग है गरीब लोगों का ऊपर ये लागू होगा, और जो लोग अमीर लोग है मंत्री बन गया उन लोगों का ऊपर ये नहीं लागू होगा। ये तो 100% डिस्क्रिमिनेशन है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे।
सरकारी नौकरी के लिए इस मसौदा नीति के खिलाफ बात करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हाफिज रशीद अहमद चौधरी ने बीबीसी से कहा।
देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में नौकरी मिलने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होता है, उस क्वालिफिकेशन में ये सब नहीं है। ये नौकरी कितने लोग करते हैं, हार्डली 4%, 6% मुसलमान नौकरी में है। लेकिन देखिए, मुस्लिम का 95% मुसलमान अनएजुकेटेड है। जब तक उनके एजुकेशन के मसला तुम नहीं लाओगे, आप दबाव डाल के कुछ नहीं कर सकते हैं।
हालांकि सरकार ने इस मसौदे में या फिर इसके बाहर किसी भी धर्म समुदाय की बात का कोई जिक्र नहीं किया है। बीजेपी सरकार में एकमात्र मुसलमान विधायक अमीनुल हक का कहना है।
अभी जैसा आबादी बढ़ रहा है, आबादी को रोकने के लिए वो अच्छा पदक्षेप है, वो किसी का धर्म का खिलाफ में नहीं है, तो इसीलिए उसको स्वागत करना अच्छा है। किसी धर्म का नाम में नहीं हो रहा है, हर धर्म का एक ही रोल होगा, इसी में मुसलमान का क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है।
साल 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 34% आबादी मुसलमानों की है, जबकि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण प्रदेश की जनसंख्या में तेजी से इजाफा होने के आरोप उठते रहे हैं और यहां इसी मुद्दे पर राजनीति होती रही है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
फुटपाथ पर लोगों की हजामत बनाने वाले किसी शख्स के बारे में ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि परिवार को पालने के साथ साथ उन्होंने उर्दू में पीएचडी की डिग्री कैसे हासिल की होगी। ऐसे ही एक शख्स हैं डॉक्टर अशरफ हुसैन, जो झारखंड की राजधानी रांची में रहते हैं। इन्होंने ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों का सामना किया, लेकिन ऊँची तालीम हासिल करने की हसरत को कभी दम नहीं तोड़ने दिया। सुनिए रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
रांची में उर्दू लाइब्रेरी के ठीक सामने अशरफ हुसैन के पिता लोगों के बाल दाढ़ी काटने का काम करते थे। साल 1989 में उनका निधन हुआ। उस वक्त अशरफ ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। घर चलाने के लिए मंझले भाई के साथ उन्होंने अब्बा के काम को संभालना शुरू किया। अभी सलीके से कैंची चलाना सीखा नहीं था। इस बीच मंझले भाई गुजर गए, तब भाई के बाल बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी उन पर आई। मुश्किलों में 12 साल तक पढ़ाई छूटी रही। हालांकि तमाम संघर्षों के बाद भी उनका हौसला नहीं डिगा।
बाजार में आगे में कबाड़ी की दुकान है, वहाँ हमने 2-4 महीना काम किया। जो रुई की दुकान है बड़ा बाटा के सामने 4-5 महीने काम किया। कपड़ा मंडी जो डेली मार्केट के सामने, वहाँ हमने लाट में कपड़ा बेचा। हमने इस जिंदगी में क्या नहीं किया,
लेकिन क्यों याद करें? आगे हमें कल देखना है, पीछे नहीं देखना।
हालात थोड़ा संभलने के बाद उन्होंने साल 2003 में आगे की पढ़ाई शुरू की, फिर उर्दू से बीए एमए के साथ पीएचडी की डिग्री हासिल की, लेकिन फुटपाथ पर नाई का काम नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि यही उस तरह कैंची परिवार की परवरिश और उर्दू से इसका जरिया बना। उनके संघर्ष और तालीम को देखते हुए हाल ही में अंजुमन इस्लामिया ने स्थानीय मौलाना आजाद कॉलेज में उन्हें 5,000 रुपये के मानदेय पर उर्दू पढ़ाने के लिए रखा है। अंजुमन के सदर इब्रार अहमद कहते हैं,
अपनी मेहनत से उन्होंने एमए किया है, पीएचडी भी किया है और उनकी एक किताब आई है, एक अच्छी किताब है, मैंने जो यहाँ की जो खातून अफसाना निगार है, महिलाएं जो है जो शॉर्ट स्टोरीज जो लिखती है उसपे उनकी किताब है, अच्छा रिसर्च वर्क है, उसी होती है कि बहुत मेहनत से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
हम वह कॉलेज भी गए जहाँ डॉक्टर अशरफ लड़कियों को पढ़ा रहे थे।
दिमाग को कहाँ तक हाजिर रख सकता है। आगे बढ़ते हैं। इल्ताफ हुसैन हाली किसके शागिर्द? मीर तकी मीर, मोमिन खा मोमिन, गालिब, गालिब के शागिर्द थे ना।
इसी कॉलेज में बीए की छात्रा अंजुम परवीन को इसकी खुशी है कि
ऐसे पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट में हमारे सिलेबस में शामिल, निसाब में जो भी शामिल है, गालिब, मीर तकी मीर, अल्ताफ हुसैन हाली, उनके बारे में बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, 100+ लिखा के समझाते हैं, जिसे हम एग्ज़ाम में लिखने के समय ये दिक्कत नहीं होती है कि हम लोग जा रहे हैं सिर्फ एक बार कॉपी खोल करके देख लेते हैं, तो सर ये समझाएं, वो बात हम अच्छे से समझ कर लिखते हैं और अच्छे से नंबर हासिल करके पास भी होते हैं।
हाल ही में डॉक्टर अशरफ की लिखी एक किताब प्रकाशित हुई है। इसमें उर्दू से जुड़ी सूबे की प्रख्यात महिला उपन्यासकारों, शिक्षाविदों पर चर्चा है। हालांकि इसे छपवाने में उन्होंने पसीने की कमाई लगाई है। अब इस किताब को रांची विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में रेफरेंस के तौर पर शामिल किया जा रहा है। उर्दू विभाग की अध्यक्ष कहकशा परवीन बताती हैं,
देंगे टीचर जब लेक्चर देंगे तो उसमें जाहिर है फिक्शन निगार में या शॉर्ट स्टोरी राइटर में मेल और फीमेल दोनों का जिक्र होगा, दोनों के बारे में बताएंगे, तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि उसमें फिक्शन निगार जो फीमेल फिक्शन निगार है उसके बारे में आप लोग को जो भी जानकारी होगी इस किताब से मिल सकती है।
संघर्ष के इस लंबे सफर में डॉक्टर अशरफ की पत्नी और बच्चे शिद्दत से साथ निभाते रहे हैं, जबकि फुटपाथ के साथी उन्हें नेक इंसान बताते हैं। इन सबके बीच वे बाबू भाई के नाम से जाने जाते हैं। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
आईपीएल के 9वें मुकाबले में दिल्ली डेयर डेविल्स ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट को 97 रनों से हरा दिया है। आज किस मैच पर रहेगी नजर, सुनते हैं खेल समाचारों में।
बीबीसी खेल समाचार के साथ मैं हूँ वैभव दीवान। आईपीएल सीजन 10 का आज 10वां मुकाबला खेला जाएगा। आमने सामने होंगी दो बड़ी टीमें, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद। ये मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा। इस मुकाबले से क्या उम्मीदें हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली को सुनते हैं।
मेरे ख्याल से जैसे अभी तक मैचेस देखे हमने क्लोज, ये भी मैच क्लोज होना चाहिए। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद तो अच्छी शुरुआत की, उन्होंने दोनों मैच जीते हैं। मुंबई इंडियंस एक मैच हार चुकी है, तो ऑब्वियसली उनका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि ये मैच जीते हैं, क्योंकि एक बार हार का सिलसिला अगर शुरू हो जाता है तो मुश्किल होता है रिकवरी।
सनराइजर्स हैदराबाद की इस आईपीएल में शुरुआत काफी अच्छी रही, जहां पर युवराज सिंह फॉर्म में आते दिखे। इस टीम के पास डेविड वॉर्नर और हेनरिक जैसे भी प्लेयर्स हैं। वहीं मुंबई इंडियंस के पास रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, जोस बटलर और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी हैं। ये मुकाबला आज शाम को खेला जाएगा। साथ ही भारतीय कप्तान विराट कोहली ने संकेत दिए हैं कि वह चोट से उभरने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुंबई इंडियंस के खिलाफ 14 अप्रैल को होने वाले आईपीएल मैच में वापसी कर सकते हैं। क्रिकेट और आईपीएल से दूर अब हॉकी, जहां मलेशिया के इपोह में होने वाले अजलान शाह कप में पीआर श्रीजेश भारत की अगुवाई करेंगे। स्टार गोलकीपर पीआर श्रीजेश को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो 26वें सुल्तान अजलान शाह कप में 18 सदस्य वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान होंगे। मनप्रीत सिंह को टीम का उप कप्तान चुना गया है।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
पाकिस्तान में मौत की सजा पाने वाले कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि बशार अल असद के दुश्मन उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए रासायनिक हमला करने की साजिश रच रहे हैं। जर्मनी के डॉर्टमंड में एक स्थानीय फुटबॉल क्लब टीम की बस पर हुए हमले में एक फुटबॉलर घायल हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता ने स्वीकार किया है कि उन्होंने हिटलर और रासायनिक हथियारों को लेकर असंवेदनशील और अनुचित बयान दिया था। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें और उनका विश्लेषण जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।